पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान।
आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम मुहावरा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना, उत्तर देना अथवा अभ्यास। उर्दू भाषा वाले मुहावरा को मुहाविरा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे ईडियम कहा जाता है। वेबस्टर डिक्शनरी में ईडियम का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति जिसे व्याकरणिक या घटक भागों के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। अर्थात संस्कृत वाङ्मय में मुहावरा के लिए समानार्थक शब्द नहीं है। लोक प्रचलित हिंदी भाषा में मुहावरा को उक्तियां, ताड़न वार्ता भी कहते हैं। ताड़न से तात्पर्य जांचना, परखना, जैसे कहा जाता है कि हमने उसको ताड़ लिया। भावार्थ यह कि हम उसके मूल भाव, गुण अवगुण, विशेषताओं को जान गए। अब तो मुहावरा एक परिभाषिक शब्द बन गया है। मुहावरा का प्रयोग सामान्यतः व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कठिन बातों को भी सरल, सहज और रोचक रूप में कह सकें। मुहावरे लोक प्रचलित वाक्यांश होते हैं जिसकी उत्पत्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक इत्यादि कोई ना कोई कारण होता है। मुहावरे के अंत में होना, जाना, देना, करना आदि क्रिया का रूप होता है जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे में कम शब्दों में भी सामान्य की तुलना में विशेष अर्थ अभिव्यंजित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए हम सब सामान्यतः सामान्य बात करते वक्त भी मुहावरा का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी भाव भंगिमा के अनुरूप हम संप्रेषण को और अधिक प्रभावी बना सकें। विद्वानों ने मुहावरा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से वासुदेव नंदन प्रसाद ने परिभाषा देते हुए लिखा है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। इस तरह मुहावरा का सामान्य अर्थ हुआ ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ व्यक्त करे उसे मुहावरा कहें। जैसे आँखों का तारा एक मुहावरा है। तत्पर आँखों का कोई तारा होने से ना होकर किसी के बहुत प्यारे होने का विशेष अर्थ अभ्यंजित करता है। अर्थात बहुत प्यारे होने के अर्थ में यह मुहावरा प्रयुक्त होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लाक्षणिकता होती है जिससे उस भाषा के शब्द का भावार्थ समझने में बहुत आसानी होती है। भाषा वैज्ञानिकों ने शब्द और अर्थ के बीच के संबंध की तीन शब्द शक्तियाँ बताई हैं, आपको यह ज्ञात होगा। पहला अविधा, दूसरा लक्षण और तीसरा व्यंजना। अविधा में लोक प्रचलित सामान्य कोशगत अर्थ आता है, जैसे आम एक फल है। इस वाक्य में आम फल है यह सामान्य अर्थ है, इसका कोशगत अर्थ भी आम ही है। लक्षण में मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, जैसे कान भरना, जिसका अर्थ यहाँ षड्यंत्र करना, गुप्त बात करना होता है। और अव्यंजना, अविदा और व्यंजना के विराम ले लेने से जो अर्थ ध्वनित होता है, जैसे उसका घर गंगा है में घर गंगा है नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है, बल्कि घर की साफ सफाई, स्वच्छता और पवित्रता इत्यादि के कारण घर की अव्यंजना गंगा के रूप में की गई है। इस तरह भाषा वैज्ञानिकों ने तीन शक्तियों के आधार पर, अविदा, व्यंजना, लक्षणा के आधार पर शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। शब्द के अर्थ इन अविधाओं के माध्यम से समझ में आते हैं। प्रत्येक भाषा में ये शब्द शक्तियाँ विद्यमान हैं। सामान्यतः मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ सभी भाषाओं बोलियों में होती हैं जिसका अनुवाद उसी भाषा बोलियों के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए हम हिंदी अंग्रेजी के कुछ वाक्यांश ले सकते हैं, जैसे हिंदी का आप भले तो जग भला, अंग्रेजी में इसे गुड माइंड गुड फाइन कहते हैं। इसी तरह एक मुहावरा प्रचलित है, सांच को आँच कहाँ, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम अंग्रेजी में कहते हैं। शिक्षार्थियों, हमें मुहावरे की विशेषताओं को जान लेना भी आवश्यक है, क्योंकि स्नातक स्तर पर अध्ययन के दौरान हिंदी भाषा भाग एक में इनकी विशेषताएं के संबंध में जानकारी पूछी जाती है। मुहावरों की मुख्य विशेषताओं में है मुहावरा वाक्यांश होता है, अर्थात मुहावरा पूर्ण वाक्य भी हो सकता है, उस वाक्य का अंश भी हो सकता है, जिसके विलक्षण अर्थ की प्राप्ति वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही संभव है। साधारणतः वाक्यांश का स्वतंत्र प्रयोग अर्थ सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कोई कहे कि तुम तो चांद से हो तो इसमें लाक्षणिकता एवं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व झलक जाएगा, अर्थात वह उसकी विशेषता को व्यंजित कर रहा है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्द रूढ़ होते हैं जिन्हें पर्यायवाची शब्दों से बदला नहीं जा सकता, जैसे पानी पानी होना एक मुहावरा है। अगर इस मुहावरा को जल जल होना कहा जाए या लिखा जाए तो उसमें वह वैभव नहीं आएगा जो पानी पानी बोलने में आ रहा है। मुहावरे का मतलब केवल शब्दार्थ नहीं बल्कि गुणार्थ है। वाक्यांश में अव्यंजना तो तब आती है जब शब्द का प्रयोग वाक्य में सहज रूप में हो जाए, जैसे अंक भरना का वाक्य में प्रयोग दिनेश की माँ ने देखते ही उसे अपने अंक में भर लिया। यहाँ अंक में भर लिया का अर्थ केवल शारीरिक आलिंगन नहीं बल्कि स्नेह से लिपटना है, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को स्नेह से अपने दोनों बाहों में रख लेती है, यह उसका अर्थ है। यह शब्दार्थ प्रसंगानुसार बदल जाएगा। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है, जैसे बाजी मारना वाक्य में प्रयोग करिए मनोहर ने दौड़ में बाजी मार ली या सोहन ने स्नातक में अच्छे अंक लाकर बाजी मार ली। इन दोनों वाक्यों के प्रयोग अलग अलग हैं, पहले में दौड़ और दूसरे में अधि अंक लाना इसका अर्थ है। मुहावरा सहज एवं सरल भाषा में निर्मित होता है, इसमें कृत्रिमता नहीं होती और न ही शब्द अथवा भाषा अभिव्यंजना में कहीं बाधक बनती है। यह मुख्य विशेषताएं आप सामान्यतः मुहावरे के संबंध में कही जाती हैं समझ सकते हैं। शिक्षार्थियों, मुहावरों और कहावतों में अंतर है। मुहावरा वाक्यांश होता है, पूर्ण व स्वतंत्र वाक्य नहीं। केवल मुहावरा वाक्य का पूर्ण अर्थ अव्यक्त नहीं कर सकता, इसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है, जबकि कहावत अकेले ही वाक्य का अर्थ अव्यक्त करता है। जैसे मुहावरा उड़ती चिड़िया पहचानना और कहावत अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इन दोनों वाक्यों को लें तो हमें यह स्पष्ट अंतर समझ में आ जाता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भाव उद्दीप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि कहावत का प्रयोग श्रोता पाठक पर अमिट होता है, क्योंकि कहावत किसी सत्य घटना तथा लोक अनुभव से उद्भूत होती है। मुहावरा का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न अथवा प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जबकि कहावत में अर्थ की स्थिरता होती है। उदाहरण, कुछ मुहावरों का प्रयोग हम देख सकते हैं, जैसे मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, अर्थ अनुभव होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे, मनोज से वाद विवाद मत किया करो, अरे वह तो घाट घाट का पानी पी चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि वह बहुत अनुभवी है। इसी तरह कहावत का एक उदाहरण लेते हैं, हंसा थे उड़ गए कागा भय दीवाने, इसका अर्थ है योग्य व्यक्ति के स्थान पर अयोग्य व्यक्ति का आना। वाक्य में प्रयोग इसका देखें, दिनेश योग्य मैनेजर था लेकिन गंदी राजनीति के कारण उसके स्थान पर एक अयोग्य महेश नामक व्यक्ति की नियुक्ति हो गई। लोग कह रहे हैं हंसा थे उड़ गए कागा भय दीवाने। हम कुछ मुहावरों का अर्थ प्रयोग आगे देख रहे हैं, देखिए कैसे किया जाता है। जैसे अंत पाना, इसका वाक्य में प्रयोग कपटी लोगों का अंत पाना बड़ा कठिन होता है। इसका अंत पाना का अर्थ क्या है? निपटना। इसी तरह अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसका अर्थ, इसका प्रयोग देखें, रोहन अपने दादा का अंधे की लकड़ी है। इसी तरह अच्छे दिन आना, इसका अर्थ है सौभाग्य लौटना। प्रयोग, कभी ना कभी सबके अच्छे दिन आते हैं। अन्य उदाहरण लेते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान होना। प्रयोग, गरीबी में ही लोगों को आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। अन्य उदाहरण, आसमान टूट पड़ना, भारी संकट आ जाना। प्रयोग, जब गुजरात में भूकंप आया तब ऐसा लगा मानो विपत्तियों का आसमान टूट पड़ा हो। इसी तरह ईंट से ईंट बजाना नष्ट कर देना अर्थ है। प्रयोग, उसने कहा यदि किसी ने हम पर आक्रमण किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। एक उदाहरण अन्य है, एक आंख से देखना, समान भाव या बराबर मानना। इसका वाक्य में प्रयोग देखें, हमारे शिक्षक हम सब विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं, अर्थात हमारे शिक्षक हम सब शिक्षार्थियों पर समान भाव रखते हैं। अन्य उदाहरण देखें, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। प्रयोग, वाक्य में प्रयोग देखें इसका, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी से कलेजा ठंडा हो जाता है। एक अन्य उदाहरण देखें, कान खड़े होना, सतर्क अथवा चौकन्ना होना। इसका प्रयोग देखें, रात के सन्नाटे में चोरों की खुसुर पुसुर सुनकर मेरे कुत्ते के कान खड़े हो गए। शिक्षार्थियों, ऐसे अनेक सैकड़ों हजारों मुहावरे समाज में प्रचलित हैं। हम आप भी इन मुहावरों का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से इन मुहावरों का महत्व भी है। सामान्यतया माना जाता है कि जिस समाज में मुहावरों का जितना अधिक प्रयोग किया जाता है वह समाज उतना ही अधिक प्रगतिशील है। भाषा समृद्धि और विकास में योगदान की दृष्टि से भी मुहावरे के महत्व को स्वीकारा जाता है। बोलचाल या लेखन के समय वाक्यों में मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता आ जाती है, उसमें प्रांजलता आती है, उसमें एक तरह का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है जिससे भाषा और अधिक आकर्षक और प्राणवान हो जाती है। प्रस्तुतकर्ता की विशेष मुहावरेदार भाषा शैली उसकी पहचान बन जाती है जो उसके व्यक्तित्व को बतलाती है। मुहावरे के प्रयोग से वक्ता तथा रचनाकार या लेखक के विशिष्ट अभिव्यक्ति क्षमता का बोध होता है। वस्तुतः तो मुहावरा किसी भी भाषा के लिए प्राण रूप जैसे होते हैं, इसलिए मुहावरों को साहित्यिक विधाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुहावरे के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार की साहित्यिक रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग बाहुल्यता से देखने को मिलता है। यह मुहावरे समाज के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षार्थियों यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने भाव को अधिक से अधिक संप्रेषणीय प्रभावी बनाने के मुहावरों का प्रयोग एक अच्छा सार्थक प्रयास है। शिक्षार्थियों, आइए हम अब लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतों के बारे में चर्चा करते हैं, कहावतों के बारे में जान लेते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति से बना है। लोक अर्थात लोक, जन समुदाय, जन समूह तथा उक्ति का अर्थ है कथन, कहना। इसका अर्थ हुआ लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। इस तरह लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक कथन या जन कथन। संस्कृत में एक अलंकार का नाम लोकोक्ति है। चूंकि लोकोक्ति का जन्म किसी व्यक्ति द्वारा न होकर लोक आधारित ज्ञान होता, इसलिए इनके रचनाकार का पता नहीं होता। लोकोक्ति में कोई प्रसंग विशेष या लोक जीवन की किसी घटना की अंतर कथा जुड़ी हुई होती है जो लोक की जुबान में कथन के रूप में चल निकलती है तो लोकोक्ति बन जाती। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ भी यदि समझा जाए तो लोक की उक्ति, अर्थात लोक से उत्पन्न, लोक से कही गई उक्ति या लोक कथन। लोकोक्ति के जन्म का मूल कारण कोई घटना होती है, जैसे कोई बोल दे कि बीरबल की खिचड़ी पकाते रहो, तुमसे तो पकने से रहा। तो इस कथन में जो प्रसंग विशेष की बात आ रही है वह यह कि बीरबल ने कभी खिचड़ी पकाने की कोशिश की होगी, और वह यह कि बीरबल और अकबर के बीच का वह संवाद है जिसमें बीरबल बहुत ऊंचाई पर मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पका रहा था। यह घटना इस तरह है, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से ऐसा आदमी खोज लाने को कहा जो पूस की माह की रात्रि में रात भर नदी के पानी में खड़ा रहे। जो व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक धोबी रात भर नदी के पानी में खड़ा रहा, सवेरे बादशाह अकबर के दरबार में हुआ धोबी अपना इनाम लेने के उद्देश्य से पहुंचा। तो अकबर ने उस धोबी से पूछा कि तुमने रात क्या देखा, क्या देखकर गुजारी। धोबी ने कहा, हुजूर महल में एक दिया अर्थात दीपक जल रहा था, उसकी रोशनी देखते हुए। बादशाह ने कहा, तब तो दीपक की रोशनी तुम्हें गर्मी मिली होगी, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। बीरबल को बादशाह का यह कथन अनुचित लगा। बीरबल सोच में पड़ गया कि आखिर बादशाह को इसका उत्तर कैसे दिया जाए ताकि इस ईमानदार धोबी को इनाम दिलवाया जा सके। बीरबल ने एक तरकीब सोची। जिस रास्ते में बादशाह अकबर के जाने की योजना थी, बीरबल ने उसी रास्ते पर खूब ऊंचाई पर मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पकाना शुरू किया। मिट्टी का बर्तन इतना ऊंचा था कि उस पर ना लौ पड़ रही थी और ना ही आँच। अकबर जब पहुंचा तो बीरबल से कहने लगा, अरे मूर्ख, इतनी ऊंचाई पर मिट्टी का बर्तन बांध रखा है जिसमें ना आँच पड़ रही है ना लौ, फिर खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जब नदी में रात को खड़ा धोबी दीपक की रोशनी से गर्मी पा सकता है तो खिचड़ी भी पक जानी चाहिए। अकबर को अपनी गलती समझ में आई और उसने धोबी को राजदरबार बुलाकर उचित इनाम दिया, गलती पर पश्चाताप किया। तब से लोकोक्ति चल पड़ी, बीरबल की खिचड़ी पकाना अर्थात असंभव कार्य को संभव बनाने की कोशिश करना। लोकोक्ति अर्थात कहावत की अनेक परिभाषाएं प्रचलित हैं। हम इन परिभाषाओं में वासु नंदन प्रसाद की एक परिभाषा लेते हैं। उन्होंने कहा, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है, तब लोकोक्ति हो जाती है। शिक्षार्थियों, लोकोक्ति की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में पहली विशेषता है संक्षिप्तता। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण और संक्षिप्त होती हैं। इसका आधार सत्य घटना अथवा कहानी अथवा प्रसंग होता है, लेकिन ये मात्र दृष्टांत भर उपस्थित करती है, न कि पूरा प्रसंग इत्यादि। जैसा कि मैंने अभी बीरबल और अकबर का वह प्रसंग आपको बताया कि बीरबल की खिचड़ी पकना, लेकिन ये मात्र दृष्टांत भर उपस्थित करती है, न कि पूरा प्रसंग इत्यादि, अतः इसका आकार संक्षिप्त। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र वाक्य। लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य होती हैं, अर्थात लोकोक्तियाँ तथ्य कथ्य और अर्थ की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती हैं। तीसरा है सार। लोकोक्तियाँ किसी सत्य घटना कहानी प्रसंग पर आधारित होती हैं, जिसे पूर्ण रूप में बता पाना संभव नहीं होता, इसलिए इसका सार गर्भित होना इसका गुण है। सहजता तथा संजीवता इसकी चौथी विशेषता है। लोक जीवन से संबंधित ज्ञान अथवा अनुभवों पर आधारित होते हैं, इसलिए लोक भाषा के साथ साथ लोक की सहजता, सरलता, मधुरता तथा सजीवता श्रोताओं को प्रभावित करती है। आइए हम कुछ लोकोक्तियों के अर्थवाक में प्रयोग देखते हैं। जैसे एक लोकोक्ति है, अक्लमंद को इशारा काफी, इसका अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य थोड़े में ही समझ जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, मनोज को कुछ बताना नहीं पड़ा, उसने स्वयं ही सब काम कर लिया, तभी तो कहते हैं कि अक्लमंद को इशारा काफी। एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है जैसा कार वैसा फल। प्रयोग उसका देखिए, सोहन ने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया और अब तक 10वीं पास नहीं हो पाया, उसके पिताजी ने बहुत पहले ही कहा था अपनी करनी पार उतरनी। एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है, भैया आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ है अच्छा काम करने जाना लेकिन कोई अन्य काम करने लगना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, नर्मदा शादी में खाना खाने गई लेकिन घर वालों ने उसे खाना परोसने पर लगा दिया, तब उसके मुंह से निकल आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास, तब उसके मुंह से निकल आया था आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक लोकोक्ति बहुत प्रचलित है, वहया मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार। प्रयोग देखिए इसका, श्याम से दोस्ती बढ़ाना सही नहीं, ऐसा मनोहर ने सुरेश को समझाते हुए कहा लेकिन सुरेश नहीं माना। मनोहर सुरेश का 1000 रुपये लेकर उससे लड़ने लगा, तब मनोहर ने कहा, तुमसे तो कहा था उसे दोस्ती मत करो, तुम माने नहीं, मैं तो जानता था कि श्याम मुँह में राम बगल में छुरी जैसा है। शिक्षार्थियों, ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन लोकोक्तियों के संबंध में जानना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों नमस्कार, आज हम शब्दगत अशुद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दगत अशुद्धियाँ अर्थात बोलते और लिखते समय जो शब्द अशुद्ध लिख या बोल देते हैं उसके संबंध में। शब्द क्या है यह भी जान लेना चाहिए। एक या अधिक वर्ण से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि शब्द है। शब्द सार्थक अथवा निरर्थक हो सकता है, जैसे कमल या कमल फूल या सार्थक अर्थ बोध करता है, वहीं कमल का उल्टा लमक का कोई अर्थ नहीं। अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है, जैसे किसी प्रतिपादक तत्सम शब्द बिना मिलावट का शब्द में अउपसर्ग जोड़ दिया जाए तो आध्वनि के स्तर पर लघुतम इकाई तो है लेकिन अर्थ के स्तर पर नहीं, जैसे अतिथि अधिक इत्यादि में अउपसर्ग हटा दिया जाए तो केवल तिथि और धिक बचेगा। इसका अर्थ क्रम से दिनांक और त्योज या बेकार है लेकिन अ का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं। इसी तरह ता प्रत्यय से बने शब्द सुंदरता कोमलता को लें तो इन शब्दों में भी ता प्रत्यय हटाने से शब्द अर्थहीन नहीं होगा बल्कि सुंदर और कोमल से अर्थ की प्रतीति हो जाएगी, परंतु ता स्वतंत्र रूप से अर्थहीन है। वहीं लोकतंत्र एक शब्द भी है और स्वतंत्र भी, जो पूर्ण अर्थ दे रहा है। इस तरह स्पष्ट है कि वर्णों के सार्थक अनुक्रम से उत्पन्न ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन शब्द विज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्द की अनेक परिभाषाएं प्रचलित हैं, उनमें से भोलानाथ तिवारी कहते हैं, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। पश्चात विद्वान ब्लॉक और टेलर शब्द वह अविभाज्य स्वरूप है जिन्हें और अधिक मुक्त और स्वतंत्र रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। पश्चात विद्वान ब्लूमफील्ड कहते हैं, एक स्वतंत्र रूप जो वाक्यांश नहीं है शब्द है, शब्द वह स्वतंत्र रूप है जो छोटे स्वतंत्र रूपों से मिलकर भी ना बने। इस तरह स्पष्ट है कि ध्वनियों के मेल से बना स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका अर्थ के स्तर पर और स्वतंत्र रूप नहीं बन सकता वह शब्द है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए हैं, रूढ़ और यौगिक।
आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो।